नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में रैलियां की। पिछली महाराष्ट्र सरकार पर केंद्र सरकार की विकास परियोजना पर रोक लगाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर निर्वाचन आयोग से शिकायत की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का समय समाप्त। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के पहले सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन किया। देश में सोने और चांदी के भाव अब तक के सर्वोच्च स्तर पर और मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में इटली के मैथियो अर्नाल्डी को हराकर टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ का मैच जीतने वाले सुमित नागल पहले भारतीय बने। समाचार संध्या के साथ मैं चंद्रिका जोशी। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का आज अंतिम दिन था। इस बीच चुनाव के पहले चरण के लिए प्रचार लगातार तेज हो रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार के निरंतर प्रयासों से नक्सलवाद न केवल महाराष्ट्र बल्कि पूरे देश में कमजोर हुआ है। श्री मोदी ने चंद्रपुर में आज एक चुनावी रैली में कहा कि नक्सलवाद के प्रभावित गढ़चिरौली अब इस्पात उद्योग और विकास के लिए पहचाना जाता है। समाज के वंचित वर्ग के उत्थान के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, 50 करोड़ से अधिक लोग 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज पा रहे हैं। ऐसी सभी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने वाले समाज के वंचित और जनजातीय लोग हैं। कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए श्री मोदी ने कहा कि राज्य की पूर्व सरकार ने केंद्र सरकार की हर विकास सहायता योजना में बाधा डाली। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्रियों के नेतृत्व में सरकार ने विकास परियोजनाओं को फिर शुरू किया और राज्य के विकास को पटरी पर लेकर आए। इससे पहले छत्तीसगढ़ के बस्तर में श्री मोदी ने कहा कि देश के हर जनजातीय परिवार का जीवन बेहतर बनाना ही मोदी सरकार का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि उनका उद्देश्य देश को विकसित और हर परिवार को समृद्ध बनाना है।
साथियों, आपका सपना मोदी की गारंटी है, आपका सपना ही मोदी का संकल्प है। 24/7 और 2047 हर आदिवासी परिवार का जीवन बेहतर बनाना, ये मोदी की गारंटी है। मेरा लक्ष्य देश को विकसित बनाना है, मेरा लक्ष्य हर परिवार को समृद्ध बनाना है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 10 वर्ष में केंद्र की भाजपा सरकार ने गरीबों के कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई हैं। केंद्र सरकार ने गरीबों को उनका हक दिया है और छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार के शासन के समय भ्रष्टाचार देश की पहचान बन गई थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गरीबों के बारे में कोई चिंता नहीं थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज मध्य प्रदेश के सिवनी और शहडोल में दो जनसभाएं की। श्री गांधी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र में किए गए वादों का जिक्र किया। उन्होंने किसानों के लिए कर्ज माफी, न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू करने, महालक्ष्मी योजना के अंतर्गत महिलाओं को वार्षिक 1 लाख रुपए देने और युवाओं के लिए अप्रेंटिसशिप योजना शुरू करने की घोषणा की।
महालक्ष्मी योजना, हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी 1 साल में 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। हर महीने आपके बैंक अकाउंट में हजारों रुपए आएगा, 1 साल में टोटल 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में जाएगा, महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा।
जम्मू कश्मीर की उधमपुर लोकसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा है कि कांग्रेस को अनुच्छेद 370 पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। चुनाव प्रचार के दौरान विभिन्न जनसभाओं में डॉ जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस से ये भी स्पष्ट करने को कहा कि क्या वे पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के नागरिकता अधिकारों के पक्ष में हैं या नहीं। ये आकाशवाणी है। बिहार में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 5 निर्वाचन क्षेत्रों भागलपुर, किशनगंज, बांका, कटिहार और पूर्णिया में कुल 50 उम्मीदवार मैदान में हैं। नाम वापसी के अंतिम दिन 5 प्रत्याशियों ने अपने नाम वापस लिए। पूर्णिया में 7 और बांका संसदीय क्षेत्र में 10 उम्मीदवार मैदान में हैं। इन दोनों निर्वाचन क्षेत्रों में किसी उम्मीदवार ने नाम वापस नहीं लिए। किशनगंज लोकसभा संसदीय क्षेत्र में 15 प्रत्याशियों में से 3 और कटिहार तथा भागलपुर में 1-1 उम्मीदवार ने अपना नामांकन पत्र वापस लिया है। राजस्थान में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज नाम वापसी का समय समाप्त होने के बाद उम्मीदवारों की स्थिति स्पष्ट हो गई है। नाम वापसी के बाद इस चरण में 13 लोकसभा क्षेत्रों के लिए 152 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। कुल 191 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए थे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
दूसरे चरण में सबसे ज्यादा 18 प्रत्याशी चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट पर हैं, जबकि सबसे कम 7 प्रत्याशी झालावाड़ 12 सीट पर भाग्य आजमा रहे हैं। इस बीच आज कांग्रेस को उस समय बड़ा झटका लगा जब पार्टी की ओर से भारत आदिवासी पार्टी से बांसवाड़ा संसदीय सीट तथा बागीदोरा विधानसभा सीट उपचुनाव में गठबंधन का ऐलान करने के बाद भी उसके प्रत्याशियों ने नाम वापस नहीं लिए। पार्टी ने बांसवाड़ा से अरविंद डामोर तथा बागीदोरा विधानसभा सीट पर उपचुनाव में कपूर सिंह को अपना प्रत्याशी बनाकर नामांकन करवाया था। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
असम में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में कुल 61 उम्मीदवार मैदान में हैं। आज एक उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस लिया। इस चरण में 5 सीटों पर मतदान होगा। भाजपा की ओर से राज्य के परिवहन मंत्री परिमल शुक्ला वैद्य और मौजूदा सांसद दिलीप साइकिया और कृपानाथ मल्लाह चुनाव मैदान में हैं। केरल की सभी 20 लोकसभा सीटों पर नाम वापसी का आज अंतिम दिन था। अब कुल 194 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होगा।
लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम
हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर।
चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर,
विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण,
दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए
लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024।
ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। कांग्रेस ने पार्टी के घोषणा पत्र के बारे में प्रधानमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर निर्वाचन आयोग में शिकायत की है। नई दिल्ली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद के नेतृत्व में आज एक शिष्टमंडल ने आयोग से मुलाकात की। श्री खुर्शीद ने बताया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप वाले श्री मोदी के बयान पर पार्टी ने आपत्ति की है। उन्होंने निर्वाचन आयोग से कहा कि इस मामले को गंभीरता से लें और कार्रवाई करें। निर्वाचन आयोग पश्चिम बंगाल में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के पहले चरण में सफल मतदान के सभी प्रयास कर रहा है। अलीपुरद्वार के लोग इस दिन मतदान में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
अलीपुर द्वार में पहले चरण के चुनाव के तहत 19 अप्रैल को मतदान होगा। इस संसदीय क्षेत्र में 7 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। अलीपुर द्वार में 17 लाख से अधिक मतदाता हैं। थर्ड जेंडर मतदाताओं की संख्या 62 है। राज्य में महिला मतदाताओं की संख्या 8 लाख से अधिक है। कुल मतदान केंद्रों में से 230 बूथों का प्रबंधन महिलाएं करेंगी। चुनाव आयोग ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं। आयोग द्वारा मतदान कर्मियों के लिए प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान संचालित किए जा रहे हैं। अवैध नकदी, सोना, हथियार और अन्य चीजों की जब्ती की जा रही है। सभी राजनीतिक दल जोर शोर से जनसभाएं और जनसंपर्क कर रहे हैं। कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति प्रताप सिंह।
सेना के तीनों अंगों का सम्मेलन परिवर्तन चिंतन आज नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान ने सेना के लिए संयुक्त संस्कृति विकसित करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि युद्ध में लड़ने की क्षमता और अंतर संचालन क्षमता बढ़ाकर सेना के प्रत्येक अंग की क्षमता को एकीकृत करने की जरूरत है। सम्मेलन में सैन्य और असैन्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा पर असर डालने वाले सामरिक मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
डियर वोटर्स, इलेक्शंस आर हियर। डाउनलोड योर वोटर हेल्पलाइन ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर एंड मेक श्योर योर नेम इज देयर इन द इलेक्टोरल लिस्ट। वोटर हेल्पलाइन ऐप ऑल्सो हेल्प्स इन वोटर रजिस्ट्रेशन, सर्च इन इलेक्टोरल रोल, इन्फॉर्मेशन ऑन द कैंडिडेट, इलेक्शन रिजल्ट, कम्प्लेंट एंड इन्फॉर्मेशन ऑन EVM एंड इलेक्शन प्रोसेस। चुनाव का पर्व देश का गर्व।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने चैत्र शुक्लादि, उगादि, गुड़ी पाड़वा, चेटीचंद, नवरेह और सजीबू चेईराउबा की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि ये त्यौहार भारतीय नववर्ष के स्वागत का अवसर है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि अलग अलग नामों से मनाए जाने वाले इन पर्वों का महत्व एक ही है और ये त्यौहार भारत के विभिन्न हिस्सों में पारंपरिक नववर्ष का प्रतीक है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 494 अंक के उछाल के साथ 74,742.50 अंक की नई ऊंचाई पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में सेंसेक्स 621 अंक की बढ़त के साथ 74,869 अंकों के नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 153 अंक की तेजी के साथ 22,666 अंक पर आकर बंद हुआ। दिन के कारोबार में निफ्टी भी 184 अंक की बढ़त के साथ अब तक के सर्वोच्च स्तर 22,697 अंकों के नए रिकॉर्ड स्तर पर आ चुका था। विदेशी मुद्रा बाजार में आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया 83.31 रूपये पर बंद हुआ और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में जून के अनुबंध के लिए सोना 71,029 रूपये प्रति 10 ग्राम पर था।
सुमित नागल ATP मास्टर्स मोंटे कार्लो टेनिस टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ के पहले दौर का मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। भारत के शीर्ष वरीयता प्राप्त सिंगल्स खिलाड़ी नागल ने मैथ्यू अर्नाल्डी को 5-7, 6-2, 6-4 से पराजित किया। दूसरे दौर में अब उनका सामना डेनमार्क के हॉलगर रने से होगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में रैलियां की, पिछली महाराष्ट्र सरकार पर केंद्र सरकार की विकास परियोजना पर रोक लगाने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र पर प्रधानमंत्री की टिप्पणी पर निर्वाचन आयोग से शिकायत की। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का समय समाप्त। रक्षा मंत्रालय ने नई दिल्ली में तीनों सेनाओं के पहले सम्मेलन परिवर्तन चिंतन का आयोजन किया। देश में सोने और चांदी के भाव अब तक के सर्वोच्च स्तर पर और मोंटे कार्लो मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट में इटली के मैथ्यू अर्नाल्डी को हराकर टूर्नामेंट के मुख्य ड्रॉ का मैच जीतने वाले सुमित नागल पहले भारतीय बने। के साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त।